नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 70% बाजरा वाले आटे पर जीएसटी को घटाकर 0% किया। भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रयागराज में भव्य परेड का आयोजन। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारत की पदक यात्रा पर हम नजर डालें तो सबसे ज्यादा 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और किशोर कुमार जेना ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पारुल चौधरी और अविनाश साबले का डबल पोडियम, तजिंदर पाल सिंह तूर का शॉटपुट खिताब, 4x400 मीटर रिले टीमों का शानदार प्रदर्शन और तेजस्विन शंकर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ डेक्थलॉन और ट्रैक एंड फील्ड के यादगार लम्हे इन एशियाई खेलों के साक्ष्य बने। निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक जीते और तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए। भारतीय निशानेबाजों ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की अगुवाई में सिफत कौर सामरा और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट और कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक जीते। दोनों ही क्रिकेट टीमों के लिए ये उनका पहला खिताब था। पुरुष हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। हालांकि महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने इस महादिवसीय प्रतियोगिता में भारत का पहला बैडमिंटन गोल्ड जीता। एचएस प्रणॉय ने चोट के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में इस सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए सभी एथलीटों को बधाई दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस उपलब्धि पर भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 70% बाजरा युक्त आटा खुले में बेचे जाने पर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसे पैक करके या लेबल लगाकर बेचा जाता है तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश से आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था और आंतरिक तथा सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया है।
वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहाँ विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुँचने लगा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि त्वरित कार्रवाई बल RAF कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने की अपनी अनूठी शक्ति और क्षमता के कारण एक बेहतरीन बल बन गया है। नई दिल्ली में बल के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश विदेश से प्राप्त कड़े प्रशिक्षण की बदौलत RAF भीड़ और दंगों से निपटने में सक्षम है। श्री राय ने कहा कि RAF ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नूह में हिंसक घटनाओं से निपटने में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली वायुसेना केन्द्र में शानदार परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वायुसेना अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी करेगी। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी समेत कई गणमान्य लोग भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
वायुसेना आज अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी करेगी। बमरौली में रस्मि परेड में स्काई पैरा जंपर्स अपने कर्तव्य दिखाएंगे। पहली बार महिला अग्निवीरों के बटालियन को भी परेड में शामिल किया गया है। हवाई प्रदर्शन में लड़ाकू जेट राफेल भी शामिल होगा। पहली बार 5 हेलीकॉप्टरों की टीम सारंग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा स्काई गंगा डिस्प्ले टीम भी एक्शन में होगी। कार्यक्रम में मिग-21 को औपचारिक विदाई दी जाएगी और परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज जिला प्रशासन ने कहा है कि हवाई कर्तव्य संगम, अरैल घाट, झूसी, शास्त्री ब्रिज और आसपास के क्षेत्रों से आसानी से देखे जा सकेंगे। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व मध्य प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो करेंगे। वहीं आईपीएस सुशील कुमार और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 5, 13 इंस्पेक्टर और 2 अवर निरीक्षक एसआईटी में शामिल किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई को 22 जिलों में दर्ज 74 मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी और 2 अन्य तिथियों की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया था। भाजपा ने सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए।
6 लाख बच्चे सिपाही भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ, उसके आने जाने रहने खाने पीने ठहरने का जो खर्च हुआ आपके भ्रष्टाचारियों ने पेपर लीक करके उसके सपना को तार तार कर दिया। बिहार सरकार को जवाब देनी होगी। वो भ्रष्ट डीजीपी जिसको सिपाही भर्ती बोर्ड का अपने अध्यक्ष बनाया, पहले से वो दोषी और कलंकित है। 6 लाख बच्चों के खर्च को आप पूरा करें और सीबीआई से जांच कराइए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पटना के जेपी गोलम्बर के पास राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं कदमकुआं स्थित जयप्रकाश नारायण के आवास पर चरखा समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार मुक्त और मूल्य आधारित शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। उन्होंने भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में अमृत वाटिका का उद्घाटन किया। यह अमृत वाटिका बरौनी स्थित रिफाइनरी टाउनशिप में बनाई गई है। इंडियन ऑयल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR फंड से इसका निर्माण कराया है। इधर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन, NSS, CRPF, SSB और अन्य केंद्रीय बलों के जवान हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 322 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 178 नए मामले मिले हैं। इधर मुजफ्फरपुर में 19, सारण में 17, वैशाली में 15 और बेगूसराय में 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 8,500 लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। इधर डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना एम्स में 30 बेड वाला विशेष वार्ड बनाया गया है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो आगे भी बेड की संख्या और बढ़ाई जाएगी।
डेंगू के लिए अभी 30 बेड आइडेंटिफाई किया हुआ है और 30 बेड जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 300 बेड को हम एज आईसीयू बेड भी कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे हर बेड पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि जिसको जरूरत पड़ने पे आईसीयू बेड की तरह हम चला सकते हैं। तो एम्स पटना के पास अभी 30 बेड हम लोगों ने उसके लिए आइडेंटिफाई करके रखा है और आज के दिन में हमारे पास 19 मरीज भर।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालयों में दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि नियुक्ति पत्र वितरण और स्कूल आवंटन के लिए दो अलग अलग आयोजन स्थल चिन्हित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक आधार पर सत्यापन के बाद ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब राज्य में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 27 अक्टूबर को किया जाएगा। पहले यह तिथि 17 अक्टूबर तय थी। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारूप प्रकाशन से पहले मतदाता किसी प्रकार की आपत्ति और दावों को लेकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वोटर नाम जोड़ने, नाम में संशोधन, फोटो में बदलाव, पता सुधार के लिए आवेदन 9 दिसंबर तक कर सकते हैं। राज्य में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा। इधर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 27,000 स्थानों पर चुनावी पाठशालाएं लगाने की घोषणा की है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि प्रदेश की सरकारी जमीन की सूची 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन कर दी जाएगी। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी अपर समाहर्ताओं को इस संबंध में बैठक कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। इसके चलते मानसून की गतिविधियां कम हो रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में बारिश में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि बारिश में कमी आने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की परिस्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों इत्यादि में अगले दो दिनों के दौरान बन रही है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है।
अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, एशियाड में 72 साल में पहली बार पदकों की संख्या 100 के पार हुई, शतकवीर भारत की नजरें अब नागोया पर। इसी खबर का प्रभात खबर ने शीर्षक लगाया है, एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम पल, झूम उठा भारत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हमास के विरुद्ध इसराइल ने छेड़ा युद्ध। दैनिक भास्कर ने एक सर्वे से प्राप्त आंकड़ों को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत में अमीरों का धन 20 साल में 16 गुना बढ़ा लेकिन गरीबों का सिर्फ 1.4%। आज अखबार ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अदालत संवेदनशील हो। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का शीर्षक लगाया है, 50 साल में कोई भी कानून हो जाता है पुराना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 70% बाजरा वाले आटे पर जीएसटी को घटाकर 0% किया। भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रयागराज में भव्य परेड का आयोजन। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।